ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर एक बार आपके बीच में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं सब आपका धन्यवाद देता हूँ, इसलिए आपका आभारी हूँ। वृंदावन धाम में निवास करना बहुत बड़े भाग्य की बात है। वृंदावन धाम जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद प्राप्त होता है, और ऐसे ही जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद में संत का दर्शन होता है। और ये जो पुण्य पुण्य हम कह रहे हैं, इसका सार केवल सेवा है, क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, ये हमारा मूल स्वभाव है, जिस स्वभाव से हम लोग सब निर्माण किए गए हैं। भगवान ने हमको निर्माण किया विस्तारित होकर केवल उनके आनंद के लिए, इसलिए हमारे अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है उनकी उनकी प्रसन्नता, उनका आनंद, उनकी सेवा। और इस सेवा भाव के अलावा ब्रज धाम में प्रवेश नहीं कर सकता कोई। जो भी भगवान के सखा हैं, सखियां हैं, भगवान के माता पिता हैं, भगवान के जो गाय हैं, मोर है, तोता है, बंदर है, जितने भगवान के सखा संगति लोग करते हैं, वो सब लोग केवल एक ही क्वालिफिकेशन के ऊपर उनके साथ निवास करते हैं, वो है सेवा। और जीवन में कुछ उनके और कोई भाव है ही नहीं। अगर आनंद है, खुशी है, गम है, क्रोध है, या कभी कुछ लीला करते रहते हैं, लेकिन उसका स्थायी भाव जो है वो केवल सेवा होती है। राधा रानी अगर कभी गुस्सा भी कर लेती है कृष्ण के ऊपर, मान कर लेती है, उसका भाव भी सेवा ही है, कि उससे उनका प्रेम बढ़े, उनकी उत्कंठा बढ़े, उनकी आतुरता बढ़े, और उनको प्रसन्नता मिले, और अपना उनका संबंध प्रेम का जो है और गहरा हो जाए, इसी भावना से वो मान करती है। यहाँ का हर भाव जो है, जितने प्रकार के भाव प्रकट होते हृदय से, वो सारे भाव जो है वो केवल सेवा भाव में बसे हुए हैं, और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। और हम लोग अगर हम शरीर से वृंदावन में रह रहे हैं, तो तब तक हमको वृंदावन धाम में वास्तविक रूप में प्रवेश नहीं है, जब तक हम वो सेवा भाव को अपनाते नहीं हैं। चाहे वो कोई भी हो, बड़ा कोई संत हो, महात्मा महामंडलेश्वर हो, हाँ कोई विश्वभर का जगत गुरु हो, या कोई ऐसा ही बंदर हो, सबके लिए प्रवेश केवल एक ही भाव से है। अगर अहम है तो यहाँ प्रवेश नहीं है। शरीर से रहेंगे यार, दो प्रकार की तकलीफ होती है, एक अहंता और एक ममता। अहंता मतलब मैं कुछ हूँ, और ममता मतलब मेरा कुछ है। मेरा समझना यानी ममता, मम मतलब मेरा, ममता मतलब ये मेरा है, ये सारा मेरा है, मेरा परिवार है, मेरा पैसा है, मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा घर है, मेरा जॉब है, मेरा पोजीशन है। और मैं यानी भगवान से अलग होकर जब हम मैं की भावना करते हैं, उसको अहंता कहते हैं। और ये दोनों चीज़ें हमको भगवान से बहुत दूर ले जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। हम उस अहंता और ममता के जाल में इतने आराम से फंसे रहते हैं कि पता भी नहीं चलता है कि हम कितने भगवान से दूर चले गए। और फिर अहंता ममता के बहुत सारे बच्चे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ऐसे बहुत सारे बालक हैं। उसके आगे भी बहुत सारे ठगना, झूठ बोलना, स्वार्थ, ऐसे बहुत सारे अनंत बालक हैं उसके। जितना अहंता ममता में आप गहरे में घुसोगे, इतना नए नए बालक उत्पन्न होते रहेंगे। और एक एक बालक भगवान से हमको और दूर और दूर और दूर लेके जाएगा। इनका जो बालक होता है वो कभी भी हमको भगवान के पास लेकर नहीं आता है। जैसे जब तक ये है, तब तक ठीक ढंग से हम सेवा भी नहीं कर पाते। भगवान से हम जुड़ना चाहते हैं फिर भी जुड़ नहीं सकते, क्योंकि ये लोग जो है, जैसे दो राक्षस जो हैं, ऐसे पकड़े हुए हैं हमको कि हम छूट नहीं पाते। कितना भी ताकतवर घोड़ा होगा, अगर उसको लगाम लगा के कर किले से लगाए बना के रखेंगे, उसको बांध के रखेंगे, तो क्या भागेगा वो, कुछ हिल नहीं सकता है वो। पूरी शक्ति के साथ भी वो एक इंच भी नहीं हिल सकेगा, क्योंकि डोरी लगी हुई है, इतनी जोरदार है उसके ऊपर, तो नहीं हिल सकता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में ही हम सभी विचार कर सकते हैं, और किसी भी जीवन में विचार नहीं कर सकते। कुत्ता बिल्ली है, तोता है, क्या कर सकता है वो? वो तो अपने शरीर के अनुसार जो उसका वेग है, उन वेगों के अनुसार वो कार्य करते रहता है। भूख लगेगा तो खाने के लिए ढूंढेगा, हाँ अगर कोई नर मादी का आकर्षण हुआ तो वो मादी को ढूंढेगा, निंद सोने का मूड आ गया तो फिर सोने की जगह ढूंढेगा, कोई हमला करेगा तो रक्षा करने की प्रयत्न करेगा, बस चे जो है इस तरह से आदान प्रदान चलते रहता है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता है। हम हमारे अंदर भी वो आहार निद्रा भय और मैथुन का वेग है, लेकिन हमारा जीवन जो है केवल इसी के लिए नहीं बनाया गया है। उनके जीवन में इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ कर ही सकते नहीं, उनका दिमाग जो है उसी के लिए दिया गया है। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुन के ऊपर मनुष्य जीवन जब हम प्राप्त करते हैं तो इसके ऊपर हमको चेतना मिलती है, जो चेतना के आधार से हम सोच सकते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या हमारी पहचान है, क्या हमें करना चाहिए, हम कौन थे और क्या है, किस हद तक फंसे हैं, किस हद तक फ्री हैं, और कहाँ जाना है, कहाँ से आ रहे हैं। ये सब प्रश्न जो है केवल मनुष्य जीवन के ही माध्यम से उत्पन्न हो सकता है, और किसी भी अन्य जीवन में, अन्य लाखों योनियों में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता है कि मैं कौन हूँ। और मैं कौन हूँ का एकदम सिंपल उत्तर तुरंत मिलता है प्रामाणिक जीव को कि मैं कृष्णदास हूँ, और कोई सच्चाई नहीं दुनिया में। कोई भी बालक हो, काला हो, गोरा हो, बड़ा हो, आदमी हो, इंसान हो, धनवान हो, गरीब हो, आरोग्य संपन्न हो, बीमार हो, हाँ, काले देश का हो, गोरे देश का हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, किसी प्रकार की उसकी व्याख्या आप करेंगे, लेकिन उसकी एक ही व्याख्या है, वो है कृष्णदास। और सत्य को स्वीकार करने में कभी झूठते हैं, हमारे अहंकार के साथ में वो युद्ध होता है उसका कि मैं कौन हूँ, मैं मालिक हूँ, स्वामी हूँ कि दास हूँ। बहुत कठिनता होती है उसके अंदर समझने में कि मैं तो मालिक हूँ, मेरे अंदर ये अधिकार है, घर में पत्नी के ऊपर मेरा नियंत्रण है, घर बाहर इसका नियंत्रण है, बैंक के ऊपर मेरा इतना बैलेंस के ऊपर मेरा नियंत्रण है, हाँ, मेरे विचार से मैं ये करता हूँ, मेरी मर्जी में पराठे की सब्जी खाता हूँ, कोई पराठा खाता हूँ, जो मेरी मर्जी से होता है सब कुछ, तो मैं स्वामी हूँ, दास कहाँ से हो गया लेकिन असल में हम सब लोग दास हैं। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए भी हमको कुछ नम्रता की जरूरत है, कि बिना थोड़ी नम्रता से हम लोग स्वीकार भी नहीं कर सकते हैं, दिमाग के स्तर पर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि मैं दास हूँ। बाद में व्यवहार में तो बहुत अलग आगे की बात है लेकिन कम से कम नॉलेज के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर हमको ये स्वीकार करना जरूरी है कि हम कौन हैं। और अभी अभी बरसाने में हमारे गुरुदेव ने प्रवचन दिया था केवल दास्य के ऊपर, मैं आपको दूंगा वो प्रवचन। वो कहते हैं कि दासत्व जो है वो मुक्ति से भी परे हैं, मोक्ष प्राप्ति होती ना, मोक्ष से भी वो श्रेष्ठ है। दास बनता है वो मोक्ष को ठुकरा देता है, उसको मोक्ष भी नहीं चाहिए, क्योंकि दासत्व की पोजीशन जो है वो मोक्ष की पोजीशन से भी ऊंची है और श्रेष्ठ है। ये हकीकत है, हाँ, इसको माने या ना माने ये सत्य है। क्योंकि दास मतलब क्या होता है, दास का पोजीशन क्या होता है, कि जो दास बनता है उसके भगवान अधीन हो जाते हैं, अपने आप को उसको बेच देते हैं। तो जिसके अधीन भगवान है वो चाहता नहीं कि भगवान मेरे अधीन हो जाए, मैं उनको नियंत्रण करूं, मैं उनका स्वामी बन जाऊं, ये सोचता नहीं है। ऐसे अनन्य भाव के दास जो हैं उनके प्रति भगवान अधीन हो जाते हैं, ये भगवान की महानता है, इसलिए वो मुक्ति से भी परे हैं। तो मुक्ति से क्या होगा, ब्रह्म ज्योति में जाएंगे जहाँ पर निरंतरता है, अमरता है, हम लोग अस्तित्व हमारा चिरंतन है, लेकिन कोई संबंध नहीं है, कोई प्रेम का आदान प्रदान नहीं है, वहाँ पर पड़े रहेंगे ऐसे ही बिना कुछ कार्य किए हुए, कुछ जरूरत नहीं, भूख नहीं लगेगी, आपको नींद नहीं आएगी, कोई सेक्स का वेग नहीं होगा, कोई ईर्ष्या नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसे ही आप रहेंगे शांत, ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो कितने हद तक जीव उसमें आनंद ले सकता है कुछ भी ना किए हुए। जीव का स्वरूप है सदैव गतिमान रहना, सदैव गतिमान जीव को अगर ऐसा रख दिया आपने ऐसे ही सुई लगाकर तो कितना देर आनंद कर सकता है, बोर हो जाएगा, कुछ ना कुछ करेगा जाके। इसलिए शास्त्र में लिखा गया है कि ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले जितने भी मुक्त जीव हैं वो समय के अनुसार कुछ समय के बाद में दोबारा शरीर धारण करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं, फिर कुछ शरीर धारण करके आदान प्रदान करना चाहते हैं, कुछ गतिविधि करना चाहते हैं, कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ प्रेम और कुछ भाव का अनुभव करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं किसी प्रेम का, किसी संबंध का, वहां पर संबंध का आनंद नहीं है, इसलिए वो वापस शरीर धारण करके यहाँ पर कोई मित्र है, कोई पत्नी है, कोई बेटा है, कोई फ्रेंड है, कोई कुछ सगे वाला है, संबंधी है, पड़ोसी है, कोई जानकार है, उसका आदान प्रदान होते रहता है। इसलिए दासत्व को श्रेष्ठ माना। और आज वो कितना बढ़िया योगा योग है, हमको तो ऐसा प्लानिंग तो नहीं था हमारा, आज हनुमान जयंती है, जानते हैं हम, आज श्री हनुमान जी का जन्मदिवस है। हनुमान जी कौन है, दास्य रस के श्रेष्ठ शिरोमणि है वो, हाँ, योगा योग है, ऐसे कोई प्लानिंग नहीं था, ये ऐसे अपने आप हो गया। आज सोमवार का दिन आपका कार्यक्रम का दिन है और हनुमान जयंती का भी दिन है, इज दैट राइट? और कल है,
कल है,
आज तारीख,
आज 29,
आज 29 है और कल
30,
कल 30 है हनुमान जयंती है। एनीवेज मैं तो सुबह से हनुमान जयंती के मूड में ही था आज तो कैसी हस्ती है हनुमान जी, आप सोचो उनके जीवन में श्री राम जी की सेवा और उनका प्रसन्नता के अलावा कोई है ही नहीं कुछ उनके जीवन में। और कभी देखा है कि उन्होंने राम जी का सेवा किया लेकिन वो दुर्बल रहे हमेशा, कोई धन की कमी रही उनको, हमेशा लोन रहा उनके ऊपर, बहुत कष्ट रहा उनके ऊपर, हाँ बहुत पीड़ा रही उनको, समझ में नहीं आता ये क्या करूँ वो कैसे करूँ, इनको कैसे संभालूँ उनको कैसे संभालूँ, शरीर में बीमारी हो रही है क्या करूँ, राम जी की सेवा तो है लेकिन कुछ फायदा तो नहीं उसका, देखो अभी भी बीमार पड़ रहा हूँ। सब सोचा हमने कभी, कभी सुना ऐसे? राम जी की सेवा के अंदर होने की वजह से वो इतने इतने प्रसन्न रहा करते थे हमेशा, इतना आनंद था उनके जीवन में कि वो और सेवा कर जाते थे, और अधिक। क्योंकि सेवक जो होता है ना वो कभी अपनी सेवा के अंदर संतुष्ट नहीं होता है, अभी तो मैं सेवा की स्थिति पर आ चुका हूँ कि आगे कोई है ही नहीं, अभी इसके आगे क्या कर सकता हूँ, यही मेरी सेवा का चरम सीमा हो गई, ऐसे नहीं होता है। जैसे भगवान अनंत है वैसे भगवान का सेवा भी अनंत है और जीव का सेवा भाव भी अनंत है। जैसे भगवान के सौंदर्य अनंत है और देखने वाले की आंखों का आनंद भी अनंत है, जो देखता है उनको वो बढ़ते रहता है और सेवा देखने वाले का आनंद भी बढ़ते रहता है, क्योंकि भगवान चिरंतन वर्धनीय है, मतलब हमेशा बढ़ने वाले हैं, उनका सौंदर्य उनका भाव उनका प्रेम जो है कोई उसकी सीमा नहीं है, ये सब अनंत बातें हैं, कभी समाप्त नहीं होती है और कभी बोरिंग भी नहीं होती है वो। अभी हमने लडवा खा लिया, अभी एक खा लिया, दो खा लिया, चार खा लिया, पांच के बाद बस हो गया, अभी शाम को नहीं सुबह खाया था, अभी दूसरा कुछ खाएंगे, है ना। इसमें कुछ शुरुआत भी है कुछ अंत भी है, लेकिन भगवान की सेवा में कोई शुरुआत नहीं कोई अंत नहीं है, वो अनादिकाल से हम लोग उनके सेवक हैं और अनादिकाल तक हम वो करते रहेंगे। लेकिन बीच में गड़बड़ होता है, जब उनकी सेवा छोड़ देते हैं तो दुख का आरंभ हो जाता है, सारी दुख की शुरुआत भगवान को छोड़कर स्वार्थ में जीने से होती है, सारे दुखों की शुरुआत जो है। आप कोई भी सुख कोई भी दुख का आप व्याख्या कीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए, आपको पता चलेगा कि भगवान को छोड़कर हमने जिया कुछ चाहा स्वार्थ के सर पर, अहमता ममता के सर पर दुख का आरंभ हुआ। दुख का वर्धन कैसे होगा, और गहराई में अहंता ममता का अपनाओगे उनको तो और दुख में आप आगे आगे बढ़ते रहोगे, समस्या उलझती रहेंगी, फंसते रहेंगे, हम बाहर निकलेगा मार्ग निकलेगा नहीं जितनी गहराई में जाओगे, ये दो रोग के अंदर अहमता और ममता के अंदर। और हनुमान जी की कितनी कहानियां ऐसी जो कैसे आतुर रहते हैं वो भगवान को संतुष्ट करने के लिए, कैसे आतुर रहते हैं। हाँ एक बार वो सीता जी को उन्होंने देखा कि वो सिंदूर लगा रही थी, आपने सुना हुआ कहानी है, बहुत सुंदर कहानी है, बहुत सुंदर कहानी। तो कहते हैं मैया आप सिंदूर क्यों लगाते हो, बोले ये लगाने से राम जी को बहुत प्रसन्नता होती, मैं उनकी पत्नी हूँ ना, मेरे स्वामी हैं तो उनके नाम का सिंदूर लगाती हूँ, मांग में मेरे। बोला अच्छा, वो सोचते हैं अरे इतना सिंदूर लगाती है तो कितनी खुशी होती है उनको, तो मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरे बदन को सिंदूर लगा दूंगा, तो कितनी खुशी होगी उनको। तो अगले दिन क्या होता है, भगवान जिस प्रभु रामचंद्र जी जहाँ से गुजरने वाले हैं उस रास्ते में पूरे शरीर को सिंदूर लगा कर बैठ जाते हैं। बोले क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हो, ये क्या लगा के रखा है। नहीं सीता मैया अगर इतना सिंदूर लगाती हैं अपने मांग में तो इतनी आपको खुशी होती है, तो सोचा कि आपको अगर पूरा बदन पर लगाएं तो कितनी खुशी होगी। तो रामचंद्र जी हंस पड़े, ये भी कैसा भाव है देखो, हम लोग तो हंसते हैं, अरे क्या है हम तो कभी ऐसा लगाते नहीं, लेकिन हनुमान जी की पूजा सब जगह पर कैसे होती है, पूरा सिंदूर लगाकर उसका सिंदूर हम अपने सर पे लगाते हैं, वो सिंदूर का कलर नहीं है, वो सैफरन कलर नहीं है, वो हम लगाते हैं जो सेवा भाव को लेना चाहते हैं कि क्या भाव है उनका, क्या गहराई है उनके भाव की, उसको थोड़ा सा लगा कर हम अपने सर पे लगाने का प्रयास करते हैं कि थोड़ा सा उनका अणुमात्र हमारे अंदर भी आ जाए, प्रभु को खुश करने की जो प्रवृत्ति है वो थोड़े हमारे अंदर भी आ जाए, इसलिए हम लोग उसको लगाते हैं। हनुमान जी के पास आगे क्या मांग सकते हैं हम, उनके पास देने के लिए और सेवा के लिए कुछ है ही नहीं ना। आप बोलेंगे अच्छी पत्नी दो, अपोवर हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा उम्र हो रही है, हनुमान जी कृपा करो अच्छा पति दे दो, ये हनुमान जी नहीं कर सकते उनके अधिकार में नहीं है ये, मतलब अच्छी पत्नी दो अच्छा पति दो धन की वृद्धि हो जाए, उन्होंने कभी जीवन में अपने जीवन में धन का वृद्धि कभी किया ही नहीं, कभी उनका बैंक बैलेंस नहीं था, कभी कुछ पद पेटी में पैसा रखा नहीं था उन्होंने जो मल्टीप्लाई कर रहे थे म्यूचुअल फंड के अंदर, वो सब काम उन्होंने कभी किया ही नहीं, तो उनसे क्या मांगेंगे हम। अभी आप सब नर्स हो डॉक्टर हो, अगर आपको पेट का दर्द हो रहा है, पेट के अंदर कोई लीवर की बीमारी है, तो भी आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके दिखाएंगे पेट का दर्द का इलाज करो, ऐसा कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। आपको जानते हैं कि हार्ट का डॉक्टर है, अगर दिल में कोई तकलीफ है तो उसके पास जाओ, जाओ मत उसके पास, है ना। अगर मरणासन्न हो तो आप बोलेंगे सर्जन के पास लेके जाओ, उसका एकदम दिलास कर देगा, ठीक कर देगा। या मरणासन्न होगा तो पैलेटिव केयर में उसको आना पड़ेगा। उस तरह से अभी हनुमान जी के पास जाएंगे और बोलेंगे कि धन चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए, तो क्या करेंगे बेचारे? वो कितना मत्था टेको, कितना भी सिंदूर सब लगा दो अपने ऊपर, कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो है उनका पूरा अस्तित्व जो है वो सेवा है। और वो केवल उनका नहीं है, हर जीव का है। वो जानते हैं, हम लोग जानते नहीं है, बस हम लोग भूल गए हैं और वो याद रखते हैं, उनका स्मरण बहुत तीव्र है इसके बारे में, इसलिए वो उसमें लगे हुए हैं। और कैसे वो फर्स्ट क्लास सर्वेंट है, फर्स्ट क्लास जो प्रथम श्रेणी का सेवक होता है उसकी क्या व्याख्या होती है कि वो मालिक का हृदय का मंतव्य जो है वो जानता है बराबर से कि मालिक क्या चाहते हैं, वो फर्स्ट क्लास सर्वेंट है। हम लोग फर्स्ट क्लास बनने का वो कहते हैं ना, नाटक नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते। चलो अभी हम सोचेंगे मालिक के मन में क्या है और अपने मन के विचार से सोचेंगे मालिक के मन में क्या होगा और उसको हम करते रहेंगे, और मालिक आके बोलेगा तू मूर्ख आदमी है, मैं ऐसा सोचा नहीं था कभी भी कि आप ऐसा करोगे। तो फर्स्ट क्लास आदमी जो है ना वो सोचने से नहीं बनता है, उसको अपने आप कृपा से वो बन जाएगा फर्स्ट क्लास। तो ये कैसे फर्स्ट क्लास सर्वेंट है? इनको भेजा गया था लंका में सीता जी को ढूंढने के लिए खाली, और संदेश देने के लिए, भाई मुद्रिका दी है, संदेश दिया है, वो पहुंचा के पता करके आओ कहाँ पर हो। ये तो उनने बहुत बढ़िया से किया, फिर आगे जाकर अशोक वाटिका का नाश किया, फिर खुद बंद गए, फिर दरबार में गए रावण का दर्शन करने के लिए, भाई उसको मिलके एक बार सुनाऊंगा, मैं मैसेज देके आऊंगा उनको मेरे मालिक का। और भरी सभा में पूरा अंदाज लिया कहाँ कहाँ इनके बलस्थान हैं लंका में, कौन से जगह ऐसे है जो बलशाली है, कौन से वीर है जो बलशाली है इसके अंदर, कौन से प्रमुख नेता है, और रावण कैसा है, वो सब देखने के लिए उन्होंने सब नाटक किया है, सब प्रवेश प्राप्त करने के लिए। और फिर राम जी का संदेश जो है वो देखे आए, उनको बोला नहीं गया था कैसा करो, लेकिन राम जी के सेवा के हित में वो करके आए, बोले मैं उनका सेवक हूँ, और सेवक ने जो तुच्छ सेवक हूँ मैं, और पूरा तुम्हारा अशोक वाटिका और लंका का ध्वंस कर दिया हूँ, मालिक आएंगे तो क्या होगा सोच लो, अभी भी वसंत है, अभी भी समझ लो, अभी भी जग जाओ। लेकिन जो रावण थे वो हमारे जैसे हैं, वो बार बार याद दिलाने पर भी याद नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। हमारा भी ऐसा चीज है, हमको बार बार कहा जाता है कि हम सेवक है भगवान के, लेकिन हम फिर भी स्वामी बनने का प्रयास करते रहते हैं। उसको कितनी बार समझाया गया लेकिन वो समझ में नहीं आया उसको, उसका इतना वो सीता के ऊपर दिल आ गया था कि वो सत्य को बिल्कुल अंधा हो गया, वो सत्य के सामने, सत्य बार बार उसकी पत्नी ने, उसकी सासू ने, ससुर ने, माया दानव ने, हर व्यक्ति ने उसको बताने की कोशिश किया, विभीषण ने, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो हमको इस रावण जैसी जो अवस्था हमारी है उससे निकलना चाहिए बाहर, क्योंकि बहुत भयंकर अवस्था है, सर्वनाश ही उसके अंदर, उसका अंतिम गंतव्य स्टेशन जो है वो सर्वनाश है, वहीं पर पहुंचेगा वो बिना रुकावट से। ये हनुमान जी फर्स्ट क्लास सर्वेंट है, उन्होंने अपने स्वामी के हित में आदेश के बाद में श्रेष्ठ कार्य किया। और राम जी भी कहते हैं कि हनुमान मैं जानता था कि सीता को केवल तुम ही ढूंढ सकते हो, यानी देखो उनके पास कुछ सिद्धियां थी या कुछ पावर था, ऐसे कुछ अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स थे उनके पास में, कोई ऐसा इक्विपमेंट थे बराबर, एकदम हाईली टेक्निकल आदमी थे वैसा नहीं थे, सेवा भाव में सब वानर अच्छे थे, नल, नील, अंगद, सुग्रीव सब लोग थे, लेकिन ये कुछ अलग थे, है ना, सब जानते हैं इनकी सेवा भाव जो था, ये सब लोग जो व्याकुल थे, सब समुद्र किनारे तक आ गए, अभी क्या करें, कहाँ जाएं, ये भी उदास खड़े, सब उदास खड़े हैं। फिर उनको जाम्बुवंत जी याद दिलाते हैं, फिर वो एकदम विराट रूप धारण करके छलांग लगा के तुरंत चले जाते हैं। सब लौट के जब आते हैं तो हनुमान जी को भगवान कहते हैं, मैं जानता था कि मेरी सीता को ढूंढने का शक्ति जो है वो केवल तुम में, मैं जानता था कि तुम ही अकेले लौट के आओगे सीता को ढूंढ के निकाल के। ये स्वामी की सच्चे सेवक के प्रति विश्वास और भावना होती है। ये हमारा भी एक क्या कहते हैं उसको, प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब क्या है? भाग्य हमारा, कि अगर हमारे स्वामी जहाँ पर भी हम रहते हैं अगर वो हम पर विश्वास रख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है वो सेवा अच्छी तरह से करेगा, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की डिग्री है। श्रद्धा और विश्वास हमारे मालिक का हमारे प्रति, गुरु के दिल में शिष्य के प्रति, ये शिष्य का परम भाग्य है। तो जब वो ये पदवी हासिल कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, खत्म, उधर ही उसका कल्याण हो जाता है। जब मालिक का, गुरु जी का शिष्य के प्रति वो श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, ये अब इसे ज़्यादा हर बार बताने की जरूरत नहीं है, एक बार बताएंगे ये करना है तो वो अपने आप बराबर से उसको सोच समझ के करेगा, उसको हर कदम पर दाहिने मत रख, बाएं में बाएं रख, यहाँ से मुड़ मत वहाँ मुड़, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका मतितार्थ समझ में आएगा उसके। हृदय जो मजेदार मतलब क्या होता है, उसका सार क्या है, उसको समझ में आया कि क्या चाहते हैं गुरु महाराज। फिर वो अपनी बुद्धि को जो शुद्ध हो चुकी है, जो समर्पित बुद्धि है उसकी, उसको इस्तेमाल करके अपनी सेवा को बहुत ढंग से करते रहेगा। और ये जो धाम में जो हम रह रहे हैं, ये धाम जो है ये केवल सेवा का ही धाम है। यहाँ पर स्वामी केवल दो ही हैं, राधा और कृष्ण, और कोई स्वामी नहीं है यहाँ पर। यशोदा मैया जो डांटती भगवान को, नंद महाराज भी डांटते होंगे कभी, कुछ करेंगे, कुछ दंड भी देते होंगे, लेकिन सब लोग सेवा भाव में ही रहते हैं हमेशा। अगर डांटती भी हैं उनको, कुछ कठोर शब्द वचन भी बोलती हैं, कभी भोजन करने को नहीं आते हैं, खेलते रहते हैं भगवान, तभी भी वो सेवा भाव से ही रहते हैं। मैं आपको एक और अच्छा उदाहरण बताऊँ सेवा भाव का। इतनी सुंदर कहानी है, मैं तो मतलब जब मैंने पहली बार सुनी थी यह कहानी तो मैं इतना भाव विभोर हो गया था सुन के। आप सब जानते हैं ना कि भगवान मथुरा चले गए धनुर्विद्या खेलने के लिए, कंस ने उनको आमंत्रण दिया था, वो गए और कृष्ण बलराम और साथ में नंद महाराज भी गए, उस बहाने टैक्स भी देके आएंगे कंस को, कुछ ग्वाल बाल भी गए थे उनके साथ में। हाँ, और फिर वहाँ पर आप जानते हैं उन्होंने कोलिया पीड़ हाथी का वध कर दिया, चाणूर मुष्टिक योद्धाओं का, मुष्टि योद्धाओं का वध कर दिया कुश्ती खेल के, और कंस के जितने भी भाई बहन थे सबको मार दिया, जो उन्होंने हमला किया उनके ऊपर, जो भाई बहुत सारे थे उनके, उन्होंने हमला किया था उनके ऊपर, कंस को मार दिया और सब कुछ खत्म हो गया, मतलब जो कुछ काम था वो पूरा हो गया उनका। फिर वसुदेव जी वहाँ पर आए, देवकी जी आई और कृष्ण उनके चरणों में गिर गए, अरे मैया मैंने आपको सेवा नहीं किया कुछ, अभी आप जो कहेंगे वो मैं करूँगा। वे देखो नंद महाराज भी वहाँ खड़े हैं, हाँ सोचो कैसा प्रसंग है। देखो नंद महाराज उनको साथ में नंदगांव से आए हुए हैं, क्या सोच के आए होंगे कि जब मैं लौटूंगा तो इनको लेकर लौटूंगा, और क्या सुन रहे हैं, वो जानते हैं कि इनके ही बेटे हैं ये, हमारे पास रखे हुए हैं, हम चाहते हैं उनको ले जाएं वापस। और वे क्या कर रहे हैं, वसुदेव देवकी के चरणों में गिरे हुए हैं, कहते कि हम क्या करें, आप आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे वो करेंगे। तो कहते आपके हमको सेवा नहीं कर पाए, हम आपको अपने पास रख के गुरुकुल में भेजना चाहते हैं, आपको विद्या विभूषित करेंगे, आपको आपका दीक्षा हो जाएगा, हाँ मंत्र यज्ञोपवीत मिलेगा आपको, ठीक है जैसे आपकी इच्छा। तो ये सोचकर ये सुनकर नंद महाराज तो फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन क्या कर सकते हो, चले गए वापस। इतने दुखी थे वो कि क्या अभी यशोदा को बताऊंगा मैं, क्या कहूँगा, वो तो सोचते हो कि लेके आएंगे साथ में। तो वो इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए कि वो एक गांव है यहाँ पर मथुरा बाईपास से आप आगे चलेंगे ना गांव है उसमें, उसका नाम है गौरव, उसका नाम है, उसका देसी नाम क्या मुझे याद नहीं आ रहा है, एक नाम एक गांव है बीच में, उधर रुक गए वो, मतलब उनको आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, कैसे जाऊँ गाँव में मेरे क्या बताऊँ। तो उस गाँव में जब वो गए तो उनका बहुत सत्कार किया गया, गौरव किया गया, नाम एक बढ़ गया गौरव उस नाम गाँव का, मैं बताऊँगा उसका लोकल नाम क्या है। फिर उनको निकलना ही पड़ा वहाँ से ना, तो बड़े भारी हृदय से वो नंदगांव पहुँचे। तो यशोदा मैया तो बहुत व्याकुल है, मक्खन वक्खन बना के रखी हुई है कि खाना आएगा, मक्खन कितना नहीं मिला होगा, दूध दही माखन जो भी चाहिए सब, मिठाई संदेश सब तैयार रखा है, और बहुत आगे पीछे कर रही है, हाँ बहुत उत्सुकता है, आँखों में आंसू भी है उनसे, बहुत एंटीसिपेट कहते ना उसको, मुझे आने वाले खुशी ठाकुर जी के सेवा के आनंद में व्याकुल है वो। नंद महाराज आते हैं तो कहते हैं कहाँ है लाला, कहाँ है, तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, अपना अपना वस्त्र उतार रहे हैं, स्नान में गए, फिर आए, कहाँ है, बोलते क्यों नहीं वो, तो क्या बोलेंगे वो। तो उनको लगे हो होंगे नीचे कुछ सगाओं को मिलते होंगे, अभी आएंगे ऊपर, मैया पुकारते हुए माखन दो पुकारते हुए दे दूंगी उनको, लेकिन ये कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो फिर कहते कि नहीं आए वो हमारे संग, क्या नहीं आए हमारे संग, कैसे नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्या हुआ, 50 प्रश्न करती है। फिर बताती ऐसे ऐसे हुआ, तो बड़े दुख के सागर में डूब जाती है वो, कैसे मैं रह पाऊंगी उनके बिना। मैं सोचा आप कुछ जैसे ही कुछ समय के बाद में आएंगे, कुछ बताओगे आपके भी आ रहे हैं या आप नीचे हैं ऊपर आ रहे हैं, कुछ भी होता है, नहीं लेके आए उनको आप, कैसे पत पिता हो आप। अभी उनका फिर क्रोध में रूपांतर हो गया, वो कह रहे कैसे पिता हो तुम, तुम्हारे अंदर कुछ प्रेम ही नहीं है, कैसे तुम आ सके वहां पर, वहां से यहां तक कैसे पहुंच पाए यहां तक तुम। बाद में कहती है कि तुम जीवित कैसे रहे, मतलब तुमसे दशरथ बढ़िया थे तो राम जी के विरह में जान दिया उन्होंने, अपने प्राण उछावर कर दिए, वो तो त्रेता युग के जो थे दशरथ जी महाराज वो आपसे कई गुना श्रेष्ठ हैं, आप मरे क्यों नहीं वहीं पर, जब आपको पता चला कि नहीं आने वाले ये। तो नंद महाराज देखो शांति से सुन रहे हैं, सब रो रहे हैं, सब ये आघात जो है ना, कितना भयंकर आघात है। अगर नंद महाराज के ऐसे व्यक्ति को कोई बताया जाए कि तुमको कृष्ण पर प्रेम नहीं है तो क्या बोलेंगे वो? नहीं नहीं नहीं, मेरा प्रेम है, ऐसा कैसे नहीं बोलते हो? मेरा प्रेम है, जरूर है, तुमसे अधिक प्रेम है या तुमसे कम है, भले तुमसे कम होगा लेकिन है जरूर, ऐसा कुछ 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 ना कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे हम लोग। नंद महाराज शांत खड़े और यशोदा मैया प्रेम वश, हाँ प्रेम के वश उनका जो है सब क्रोध भी उत्पन्न हो रहा है, विफलता भी उत्पन्न हो रही है, फ्रस्ट्रेशन भी उत्पन्न हो रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ ऐसे भी उत्पन्न हो रहा है, सब अलग प्रकार की भावनाएं उस प्रेम के विरह की वजह से उत्पन्न हो रही है और वो जो मुंह में आए वो बोलते जा रही है और बहुत देर बोलने के बाद में वो बेहोश होकर गिर जाती है, फिर होश में आती है। फिर नंद महाराज उसको थोड़ा दुलारते हैं, नंद महाराज जो जवाब देते हैं वो ध्यान से सुनना। नंद महाराज कहते हैं, अरे जब वो उन्होंने तय किया कि मैं हम नहीं आएंगे तो मरना तो वो आसान था, बहुत ही आसान था, हम भी उसमें प्राण त्याग देते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं लौट के आऊँगा, ज़रूर लौट के आऊँगा, फिर मैया की सेवा करके मैं ज़रूर लौट के आऊँगा। ये जब उन्होंने कहा तो फिर मुझे लगा अरे मैं कैसे मर सकता हूँ, क्योंकि जब लौट के आएंगे और बाबा को नहीं देखेंगे तो उस पर क्या बीतेगी, इसलिए मुझे ज़िंदा रहना पड़ा और इसलिए मैं ज़िंदा रह रहा हूँ, क्योंकि जब वो लौट कर आएगा और मुझे मरा हुआ पाएगा या सुनेगा कि मैं मर गया हूँ, जैसे रामचंद्र ने सुना था ना जंगल में कि दशरथ जी नहीं रहे अभी, तुम्हारे विरह में प्राण छोड़ दिए उन्होंने, तो क्या राम की अवस्था हुई थी उस समय वो सुनकर, तो वैसे मेरे लाला की अवस्था मुझे नहीं होनी चाहिए, इसलिए यशोदा मैं अभी जीवित हूँ। आप समझ सकते हैं क्या सेवा भाव है उनका, उनके आनंद के लिए जब वो लौट कर आएंगे तो उनको जीवित दिखने चाहिए बाबा, इसलिए वो मरणासन्न मतलब हृदय से मरणासन्न अवस्था में, विरह के भाव में, लेकिन जीवित रह रहे हैं, ये सेवा भाव है। नंद बाबा का सेवा भाव ये है, इतना उच्च सेवा भाव, वो अपने आप के लिए इतना कष्ट सहेंगे विरह का भी, जीवित रहने पर क्या थोड़ी आनंद होगा उनको, ठाकुर जी तो है नहीं, वो तो मथुरा में है, वो उज्जैन जाएंगे फिर वहाँ से गुरुकुल में, लेकिन कैसा भाव है कि खुद को कष्ट होने पर भी वो सेवा के लिए जीवित रहेंगे, आगे सेवा मिलने वाली है, आगे उनको प्रसन्नता होगी उस सेवा से, मेरे जीवित रहने से, मुझे जीवित देखने से ठाकुर जी जब आएंगे तो उनको खुशी होगी, वो गोद में भाग भाग के आएंगे, गोद में आने का आनंद प्राप्त करेंगे, मैं गोद में लूंगा लेने का आनंद प्राप्त करूंगा ही, लेकिन उससे अधिक उनको मेरे गोद में भाग के आने का जो आनंद मिलेगा उसलिए मैं जीवित रहूंगा। ये सेवा भाव की वजह से भगवान अपने आप को उनको बेच देते हैं, उनके अधीन हो जाते हैं, बालक बन जाते हैं, उनके आंगन में खेलते हैं, डोलते हैं, हाँ बालक बनकर रहे थे। एक सत्यव्रत मुनि नाम के मुनि हैं, वो कहते हैं मैं पूरे ब्रह्मांड में पूरे निर्माण के अंदर किसी की पूजा नहीं करता हूँ, यहाँ तक कृष्ण की पूजा भी नहीं करता हूँ, लेकिन मैं नंद महाराज की पूजा करता हूँ। वो इतने महान है कि उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका सेवा करने का जो भाव है उसको देखकर उनके आनंद के लिए भगवान उनके लिए बालक बनकर उनके आंगन में डोल रहे हैं, उनके छोटे छोटे चरण कमल जो है उनके आंगन की शोभा बढ़ा रहे हैं, और नंद महाराज को प्रसन्न करने के लिए उनके आंगन में बालक बनकर वो आनंद दे रहे हैं, इसलिए मेरे लिए पूजनीय तो केवल नंद महाराज है। ये सेवा है, सेवा मतलब जो कोई सोचता नहीं लाभ हानि क्या है उसके अंदर, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ तक कि खुशी मिलेगी ये भी सोचता नहीं वो, यहाँ तक कि पता है दुख का सागर मिलेगा तो भी वो करेगा उसको, स्वामी की प्रसन्नता के लिए बदले में मुझे क्या मिलेगा ये ना सोचते हुए, ये जानकारी होते हुए कि दुख ही दुख मिलेगा, फिर भी वो स्वामी के लिए लगा रहता है सेवा में, ये ब्रज भाव है, ये रज का जो यहाँ के रज का जो भाव है ये है। हम लोग बड़े अच्छी तरह से पढ़ के उसको बता सकते हैं लेकिन उसको हृदय में उतारना बहुत मुश्किल बात है, लेकिन असंभव नहीं है। हाँ भगवान ने ऐसा कोई भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं बनाया है कि असंभव है और आपको बार बार बोले जा रहे हैं करो करो करते रहो और जानते हृदय में कि असंभव है नहीं कर पाएगा लेकिन बोले करो करो करो, नहीं, उन्होंने भक्ति मार्ग जो है आसान और बड़ा संभव बना दिया उन्होंने। अगर सही प्रयास हम करेंगे तो संभव होगा, ये जो नंद महाराज हनुमान जी को मुमकिन है ये उस मात्रा में हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा लेकिन उसका सार हमारे लिए नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हर जीव भगवान का अंश होने के नाते उसके अंदर वो शक्ति भगवान ने दी है, हमारा उसमें कोई क्या कहते हैं उसको क्रेडिट नहीं, हमारा कोई हमारा मान नहीं उसके कि हमारे अंदर वो है, क्योंकि हम उनके अंश है इसलिए हमारे अंदर वो भी है, क्योंकि भगवान भी परम सेवक है किसके, अपने भक्तों के। हाँ अगर भक्त उनके सेवक है तो वो भक्तों के सेवक है, और ये चिरंतन जो है प्रतियोगिता चलती रहती है कौन किसकी अधिक सेवा करता है, भक्त भगवान की करेगा कि भगवान भक्त की करेगा। दिस इज इटर्नल कॉम्पिटिशन, हमेशा के लिए चलते रहता है। तो हमारे लिए क्या सीखना है इसके अंदर, ये सब समझ के देख के सुन के, क्योंकि हम भी ब्रज में रह रहे हैं, ब्रज में हमारा शरीर पड़ा हुआ है, किसी का जन्म के नाते पड़ा हुआ है, किसी का बाहर से आके पड़ा हुआ है, किसी का कुछ समय के लिए पड़ा हुआ है, किसी का कुछ सोचते हैं दूर बैठकर, इसलिए ब्रज में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये परिपूर्ण तब होगा जब हम समझेंगे कि यहाँ के एक एक क्षण का निवास कितना मूल्यवान है और कितना कीमती है, जब हम समझेंगे तो ही हम उसको कुछ लाभ उठा सकते हैं उसका। और आपको पता ही नहीं कि आपके जेब में 1,00,000 रुपए है तो आप क्या लाभ लेंगे, आप तो ऐसे भीख मांगे मुंगते रहेंगे कि कुछ खाना मिलेगा क्या। अगर आपको बता दिया जाए कि आपके जेब में 1,00,000 रुपए है, जा ढूंढो यहाँ पर पीछे की साइड पे है, तो आप बिल्कुल एक मिनट में भीख नहीं मांगेंगे, तुरंत उसको निकालेंगे और कुछ खरीदेंगे आपके लिए। लेकिन हमारी अवस्था ऐसी है, हमारे हृदय के अंदर अमूल्य धन, अनंत धन बसा हुआ है, फिर हम लोग जानते नहीं उसको, बाहर ढूंढ रहे हैं। जैसे वो कस्तूरी होता है ना, कस्तूरी का मृग होता है ना, उसके नाभि में वो सुगंधित वस्तु होती है, दुनिया भर ढूंढते रहता है वो, कहाँ से खुशबू आ रही है, सुगंध कहाँ से आ रही है, ढूंढ रहा है सब जगह, सब ढूंढ रहा है, कहीं प्राप्त नहीं होती उसको, क्योंकि वो बाहर की दिशा में उसको ढूंढ रहा है। जैसे ही उसकी दृष्टि अंदर की ओर आती है, तुरंत पता चलता है कि यहीं से आ रही है खुशबू। हमारे भी कुछ ऐसी अवस्था है, हमारे सबके आत्मा और हृदय के अंदर भगवान ने ये पूंजी रखी हुई है, हम लोग उसको जानते नहीं हैं, और जानने के बाद वो चाबी नहीं हमारे पास। ये चाबी है ना, ये सेवा भाव की चाबी, और कोई ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग उसकी चाबी नहीं हो सकती है, कहीं अलग भंडार में पहुंच जाएंगे आप जो आपकी आत्मा की संतुष्टि और पूर्ति नहीं कर सकती है। और आत्मा को जो उसको चाहिए, अगर आपको पूर्ति करनी है तो एक ही चाबी है, वो सेवा। और एक समझने वाली बात इसके अंदर है कि आपको सेवा करनी नहीं, समझो नहीं करना चाहता मैं सेवा, पर मैं सेवा करूंगा, मैं बिल्कुल सेवा नहीं करूंगा, ना भगवान की करूंगा ना किसी और की करूंगा, लेकिन फिर भी जबरदस्ती हमको सेवा करनी ही पड़ती है। अगर भगवान की नहीं करेंगे, गुरु की नहीं करेंगे, तो फिर पत्नी की करेंगे, पति की करेंगे, बालक की करेंगे, इस शरीर की करेंगे, शरीर बोलेगा जलेबी दो तो जलेबी खिलाएंगे शरीर को, बोले सेक्स दो तो सेक्स देंगे उसको, कपड़ा दो कपड़ा देंगे, जो शरीर मांगेगा उसको पूरा करेंगे, शरीर बीमार पड़ेगा तो दवा देनी पड़ेगी उसको आपको। सेवा तो आपका स्थायी भाव है, उसको छोड़ के कहाँ भागेंगे आप। अरे अगर किसकी सेवा नहीं करेंगे तो कुत्ते की सेवा करेंगे, क्योंकि कोई सेवा करने को है नहीं, कोई मालिक नहीं है, तो फिर कुत्ता रखेंगे, वो कुत्ते की नहलाएंगे उसको, टट्टी पे साफ करेंगे, अमेरिका में उसको साफ चट्टी को करके जेब में रखेंगे टिश्यू पेपर के अंदर, फिर घर जाकर डस्टबिन में डालेंगे। क्यों? क्योंकि सेवा करना किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की, ये हर आत्मा का स्थायी भाव है बाय नेचर। किसी व्यक्ति की सेवा करना, किसी व्यक्ति को हीरो की तरह बनाना, मतलब मेरा आदर्श के रूप में, ये हमारा स्वभाव है। अगर हम भगवान को हीरो नहीं बनाएंगे तो किसी सलमान खान को बनाएंगे या किसी क्रिकेटर को बनाएंगे, और उसको हार डालेंगे, उसको फोटो को घर में फोटो रखेंगे और उसको हार लगाएंगे, क्योंकि ये हर जीव की प्रवृत्ति है, दूसरों की सेवा करना ये हमारी प्रवृत्ति है, और वो प्रवृत्ति भगवान के लिए है। जब भगवान के लिए खत्म हो जाती है तो किसी अन्य रूप से वो प्रकट हो जाती है, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए, या किसी क्रिकेटर के लिए। जो मरने वाला व्यक्ति है, जो नश्वर है, नाशवान है, उसकी सेवा और उसका पूजा और उसको सराहना में हम लगे रहते हैं। लाभ क्या है उसके अंदर? कुछ नहीं। ना हमारी सेवा उस तक पहुँचती है, जब मैं क्रिकेटर के फोटो को हार डालता हूँ तो वो सेवा उस तक पहुँचती भी नहीं, लेकिन भगवान की फोटो को हार डालने भगवान तक पहुंच जाती है वो सेवा। यही तो अंतर है भगवान के उसके अंदर, वो तो नश्वर जीव है, भगवान तो परमात्मा है, अखिल ब्रह्मांड नायक परमेश्वर है। तो इसलिए भगवान की तो हमारे पहचान तक हुई नहीं, हम तो इतने तुच्छ जीव हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो हैं, जो आते हैं हमारे सामने दर्शन देते हैं, उनके आकृति को रूप को हम देख सकते हैं। और कभी कभी भगवान की इच्छा से वो किसी परेशानी में आते हैं, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ बीमारी है, कोई मरणासन्न में है, कोई तकलीफ में है, और हमको सेवा का मौका मिलता है। उससे हम केवल एक ही चीज वस्तु साबित कर सकते हैं कि भगवान हम आपको चाहते हैं, इसलिए आपने भेजी हुई सेवा हम करेंगे। फिर हम जानते हैं कि आपने भेजा हुआ कार्य है, या हम उसको सेवा करेंगे, या जरूर आप उसको स्वीकार करेंगे और हम पर कृपा करेंगे, और आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। इसलिए भगवान से भी ऊपर जिसकी भगवान सेवा करता है उसकी सेवा करना श्रेष्ठ माना गया है। एकदम फॉर्मूला बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके अंदर। जिसकी हम सेवा करते हैं भगवान, वो भगवान जो है अपने भक्त की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, और ऐसे जिसकी भगवान सेवा करना चाहते हैं उसकी हम भी सेवा करते हैं तो भगवान अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी सेवा करने से भी अधिक प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि समझो आप, आपके घर में कोई बालक है समझो, हाँ जैसे आपके पिताजी हैं समझो, आप उन पर प्रेम करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं और जब उनको कोई ज़रूरत पड़ती है तो कोई व्यक्ति उनको सहायता करता है तो आप उन पर प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि जिनकी आप सेवा करना चाहते हैं, जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं, उनको भी और भी कोई प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है तो उस पर आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे? अगर मैं आपके घर पर आता हूँ और आपका बहुत सराहना करता हूँ, पूजा करता हूँ आपकी, आपकी तारीफ करता हूँ, आपको गिफ्ट देता हूँ और जाते हुए आपके बालक को एक तमाचा मार के चला जाता हूँ तो क्या करेंगे आप? सारा गिफ्ट उठा के खिड़की के बाहर फेंक देंगे और डंडा हाथ में लेके जाएंगे तो आप कहेंगे अरे अभी तो मैं आपको तारीफ किया था, अभी तो आपको पूजा की थी मैंने, गिफ्ट दिया था, अरे भाड़ में गया तुम्हारा गिफ्ट, पहले डंडे से उसको पीटेंगे। क्योंकि आपको अपनी अपनी पूजा और सराहना इतना पसंद नहीं है जितना आपको अपने बालक पर प्रेम है। लेकिन आप घर पर आ जाओ तुरंत ही, पहले बालक को ट्रॉफी दे दो, पहले उसको प्रेम से चुम्मा दे दो, उसको थोड़ा सा प्रसन्न करो और फिर मालिक को मिलने के आ जाओ। फिर मालिक को कुछ मत दो, ना गिफ्ट दो ना तराना करो, कुछ मत करो, मालिक पहले से ही पसंद है आपके ऊपर। क्योंकि जो उसको पसंद है, जो उसको प्रेम कर, जिस पर वो प्रेम करता है उसको आपने पहले पसंद कर दिया है तो सेपरेटली उसको कोई गिफ्ट देने की जरूरत नहीं उसको पसंद करने के लिए, वो पहले से अपने आप ही आपके ऊपर पसंद हो गया है। ये सिंपल फॉर्मूला है जो हमारे जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं, वही फॉर्मूला भगवान के जीवन में भी लागू है। इसलिए भगवान से भी अधिक भगवान की भक्ति की सेवा करने को हमको तड़पना चाहिए। वो एकदम डायरेक्ट भगवान को पसंद करने का एकदम सीधा सा मार्ग है, उसके लिए कोई बड़ी बुद्धि, बड़ा ज्ञान, पांडित्य, शरीर का सौंदर्य, शक्ति की जरूरत नहीं होती है, केवल भाव की जरूरत होती है। और भाव तो ऐसी वस्तु है कि भाव से भगवान सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। अरे वो गिलहरी थी, क्या शक्ति उसके अंदर थी? अरे हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ को लेकर डाल रहे थे, पहाड़ समुद्र के अंदर। वो गिलहरी बेचारी क्या कर रही थी? थोड़ा सा लोटपोट होती थी, थोड़े कुछ दाने रेती के ऐसे फेंकती थी समुद्र के अंदर, और अगर 1 करोड़ जन्म के बाद भी वो प्रयास करते रहती तो कभी सेतु बनता नहीं था, ना 1 इंच भी आगे बढ़ता नहीं था, इतनी कितना डालेगी वो डाल के। लेकिन जितनी हद पर हनुमान जी की सेवा भगवान ने स्वीकार किया, उतने ही हद पर, उतने ही प्रमाण में उसका सेवा भगवान ने स्वीकार किया। क्योंकि वो मात्रा में सेवा स्वीकार नहीं करते, वो भाव में स्वीकार करते हैं। आप बोलेंगे कि कितना टन का पहाड़ हनुमान जी ने उठाया और कितना ग्राम और मिलीग्राम का मट्टी इसने फेंका है उसके अंदर, तो क्या वैल्यू है उसका? हटो तुम यहाँ से, ये तो गोल्ड मेडलिस्ट है, ये तो इधर है ही नहीं रेस में। नहीं, हनुमान को डांटा उन्होंने, उन्होंने कहा तुम्हारी सेवा की मात्रा बहुत बड़ी है, इसकी सेवा की मात्रा बहुत छोटी है, लेकिन दोनों तुम बराबर हो। बड़ा कैसे बराबर है? क्योंकि वो 100% अपनी शक्ति को दे रहा है मेरी सेवा में, आप अपनी 100% मेरी सेवा में दे रहे हो, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर हो। कितनी सीधी सी बात है, भगवान भावग्राही है। आप कितना, अगर हनुमान की शक्ति अगर 10 पहाड़ उठाने की थी और अगर 9 उठाता फिर भी आप सराहना करते, वाह वाह 9 पहाड़ उठाए उसने, लेकिन भगवान जानते हैं कि 90% ही दिया उसने, 10% नहीं दिया है। और अगर जो गिलहरी थी वो सब डाल रही है और वो उसके 1 करोड़वां हिस्सा भी नहीं है, फिर भी बोलेंगे 100% दे रहे हैं। तो भगवान जो है वो समर्पण चाहते हैं, समर्पित भाव से जो सेवा करता है उसके लिए भगवान में कोई भेदभाव नहीं है। ये हनुमान जी की सेवा है, ये सुग्रीव की है, अंगद की है और ये गिलहरी की है, ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या हो गया, हमारे लिए और आसान हो गया। हम अगर गरीब भी होंगे बोलेंगे अरे साहब आप तो क्या है भाई साहब, आप तो बहुत अमीर हो, आप भक्ति वक्ति कर सकते हो, आपका सब साधन जुड़े हुए हैं, ऐसे बोल नहीं सकते हम लोग। हाँ, गरीब आदमी रहेगा तो भी वो हृदय से भगवान की सेवा कर सकता है और भगवान को स्वीकार करेंगे, ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा पॉइंट है समझने जैसा। ये दुनिया के मालिक कैसे होते हैं, वो सेवा भारी की सेवा देखते हैं और उसके ऊपर उसको स्वीकार अस्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान एकदम उल्टे हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं लेकिन सेवा स्वीकार करने में एकदम उल्टे हैं। वो मात्रा को बिल्कुल देखते नहीं है, केवल भाव को देखते हैं। और भाव जो है वो हमारे कब्जे में है, धन दौलत, अच्छा जन्म, हाँ अच्छी पढ़ाई, अच्छा ज्ञान या अच्छे कुल में जन्म, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। मेरी कई हजारों गुना मेरी इच्छा है कि मैं किसी धनवान आदमी के घर में जन्म ले लूँ, ये झंझट ही नहीं मुझे पड़ेगा कुछ मेहनत करने का, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर जो है वो अमेरिकन के आदमी की तरह बहुत गोरा गोरा सुंदर होना चाहिए, मेरे बाल ऐसे सुनहरे होने चाहिए, लंबे एकदम घुघराले होने चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर सकता उसको, वो मेरे हाथ में है नहीं। वो मुझे इस वक्त अमेरिका में बैठना चाहिए डॉलर्स के ऊपर आनंद लेते हुए, मेरी 50 सुंदर पत्नियाँ होनी चाहिए, ऐसा कुछ विचार मन में आ सकते हैं, लेकिन इसमें से कोई वस्तु हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन भाव जो है वो 100% आपके हाथ में है। इस वक्त आप तय कर सकते हैं कि मुझे ये सब करना है कि नहीं करना है। इस वक्त आप तय कर सकते हैं कि सुनना है कि नहीं सुनना है। ये आपके अंडर है, कंप्लीट आपके अंडर है। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसको अगर नहीं सुनना है तो आप बंद कर, दिमाग बंद कर सकते हैं। आंखें सब खुली हुए बैठे हुए एकदम टेंशन में, लेकिन दिमाग का बटन बंद कर दिया, ये आपके हाथ में है। क्योंकि ये पूरा उत्तरदायित्व और स्वामित्व भगवान ने आपको दिया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसी खाते में भाव की बात आती है। इसलिए हमारे लिए आसान हो गया एक दृष्टि से, कोई डरने की बात नहीं। हम अमीर नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, सुंदर नहीं है, प्रभावशाली व्यक्ति तो नहीं, हमारा कोई कॉन्टैक्ट हमारे बड़े नहीं है, हम लोग बहुत तुच्छ व्यक्ति समझो, एकदम ही कॉमन मैन है हम लोग। कोई हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है जो किसी को प्रभावित कर सके, फिर भी हम भगवान को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? अपने 100% को देकर। और वो अगर हम देते हैं तो भगवान 100% प्रसन्न हो जाएगा हमारे को। कई दाखला है उसका, कितना प्रूफ है उसका इतिहास के अंदर। और हमारे हृदय में क्या चल रहा है ये भगवान जानते हैं। अगर हम चीटिंग कर रहे हैं तो वो भी जानते हैं, अगर हम झूठ बोल रहे हैं, बहाने बना रहे हैं तो वो भी जानते हैं, और सच्चे दिल से अगर कर रहे हैं तो वो भी जानते हैं। उनसे कुछ बात छुपी नहीं, कुछ भी नहीं छुप सकती है। हमारा जो है एकदम ट्रांसपेरेंट टीवी, ये बोलते ना वो उनका उनका कैमरा जो है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है, सबके हृदय में क्या चल रहा है सब उनको पता है। इसलिए हम सबको चीट कर सकते हैं, हम अपने आप को इसको चीट कर सकते हैं, उनको चीट नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। उनके पास कोई नाटक नहीं कर सकते, कोई भूल भुलैया कोई ड्रामा नहीं कर सकते उनके सामने, कोई झूठ मूठ का पहाड़ नहीं बना सकते उनके सामने, महल नहीं बना सकते दिखावे का, हाँ उनके सामने कुछ टिकता नहीं है। क्योंकि वो परम सत्य है, परम सत्य के सामने कोई भूल भुलैया कोई महल नाटक कोई दिखावा नहीं टिक सकता है। ये भी थोड़ी सी कॉशन यानी कि क्या कहते हैं उसको, संभालने की बात है, समझने वाली बात। हमारा बहुत परम समय, कल रोमचू को बता रहा था इसी बात को कि यहाँ पर जो है जैसे भक्ति विधान हॉस्पिटल है हमारा, वहाँ पर हर तरह का आदमी आता है। कोई मुसलमान भी आता है, कोई पापी आता है, कोई व्यभिचारी भी आता है, कोई डाकू भी आ सकता है, कोई पिक पॉकेट भी आ सकता है, कोई लुटेरा भी आ सकता है, हम लोग कुछ कर नहीं सकते उसको, आया बीमार तो हम इलाज करेंगे उसके ऊपर। और कोई भक्त भी आ सकता है, कोई सन्यासी साधु भक्त महात्मा भी आ सकता है, लेकिन भक्ति विधान तो हॉस्पिस जो वृंदावन में है इसमें केवल महात्मा ही लोग आते हैं। क्योंकि दो कैटेगरी के लोग हैं, एक तो ब्रजवासी आता है यहाँ पर, या तो हमारे संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं वो आते हैं मरणासन्न अवस्था में, असहाय अवस्था में, जो जीवन भर किसी ने उनको सेवा नहीं दिया उन्होंने, कभी किसी को अपना सेवा किसी को नहीं दिया उन्होंने, लेकिन अभी ऐसी अवस्था में आए हैं कि सेवा लेने के लिए आए हैं वो। महाराज जी क्या क्या सेवा करते हैं? नहीं कुछ नहीं, एवरीथिंग फाइन। लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे ना तो उनका कई सेवाएँ हैं जो हम कर सकते हैं उनकी, वो भी उस समय ऐसे अवस्था में है, क्या कर सकते हैं। तो माता जी मुझे बता रही थी कि थोड़ी बहुत सेवा करते हैं तो कितना आशीर्वाद देते हैं वो। हमारे बरसाना आई कैंप के अंदर हमारे जो कर्मचारी है ना बॉम्बे से आने वाले, और रोते हैं वो, और इतना आशीर्वाद एक साथ में होलसेल में, उनको हैबिट नहीं है, बॉम्बे में कोई आशीर्वाद देता नहीं है, केवल गाली बकते रहते हैं। सब शहरों में ऐसा होता है, कुछ भी करो केवल गाली मिलती है, और यहाँ पर एकदम होलसेल में कुछ ही दिनों के अंदर सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उनको रोना आता है। अरे ऐसा आदत नहीं हमको आशीर्वाद स्वीकार करने की, ऐसी जगह आई है यहाँ पर कुछ कुछ सेवा हो जाते तो धन्यवाद देते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी कोई मरते हैं तो बोलते हैं मर गए तो हमको दुख है हमारा, वो दादाजी मर गए हमारे, लेकिन यहाँ मरे इसलिए खुशी है हमको, बहुत परम भाग्य है उनका कि यहाँ गुजर गए। वो कैसे मान सम्मान के साथ भगवान का कीर्तन, नाम, गंगा जल, तुलसी, शास्त्र पठन, हाँ भगवान भक्तों की प्रार्थना, ये सब लेकर रिच होकर चले गए वो यहाँ से। और कहीं तो ऐसा नहीं होता था। वैसे ये लोग जो यहाँ पर आएंगे समझो शरीर छोड़ना है उनको आज नहीं तो कल, लेकिन आपके सेवा के अंदर छोड़ेंगे तो भगवान का नाम है, भगवान की माला है, प्रसादी चरणामृत है, तुलसी है, रज है, हाँ भगवान का कीर्तन है, नाम है, सब कुछ मिलके उनको मतलब क्या कहते हैं धनवान आध्यात्मिक रूप से होकर वो जाएंगे आगे यहाँ से। और आप लोग ऐसे, मेरे गुरु जी कहते हैं कि आपकी सेवा कैसे मालूम है कि गौलोक वृंदावन का दरवाजा आप छोड़ के लाए चलिए अंदर। इस दवाखाने में होता है, दवाखाने में डॉक्टर जब भी पेशेंट को छोड़ने आता है तो क्या करता है, खुद कुर्सी से उठता है और दरवाज़ा खोल के ऐसे खड़ा रहता है, दरवाज़ा पकड़ के आइए, जिसको बोलते हैं आइए अंदर, फिर दरवाज़ा बंद करके उनको बिठाता है और लेके आता है। ऐसे एक्चुअली होना चाहिए। तो दवाखाने का मालिक है वो, लेकिन खुद उठ के वो दरवाज़ा खोल के जो मरीज है उसको बोल रहा है जाइए और आइए। उस प्रकार से आप लोग क्या कर रहे हैं, भगवान के गौ लोग धाम का दरवाज़ा ऐसे खोल के बोल रहे हैं आइए महाराज जी अंदर जाइए, फिर बंद करेंगे, फिर और किसी को लेने आएंगे, फिर और किसी को छोड़ने आएंगे वहाँ पर। ये आपकी सेवा है, बिलीव मी, तो सत्य है। अगर आपकी सेवा का रहस्य आप समझते हो तो एक्चुअली आपकी सेवा यही है, दुखी और दर्दी मरीज को दुख निवारण करके, दर्द निवारण करके, पूरी उसकी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके, मृत्यु को सामना करने के लिए पूरी तैयारी के साथ में, प्रेम के साथ में आप तैयार करके उसको बोल रहे हैं जाओ अभी, आप उसको पूरा शस्त्र दे रहे हैं आप, पूरा आप मृत्यु के युद्ध के लिए, प्रेम का, करुणा का, माँ भगवान के प्रति आकर्षण का, दर्द निवारण करके सब शस्त्र चढ़ा कर उसको पूरा सज्ज कर रहे हैं आप, शस्त्र सज्ज कर रहे हैं कि जाइए आप, अभी एक आखिरी परीक्षा बाकी है, उसमें आप निश्चित यशस्वी हो जाएंगे और फिर आपके परम प्रिय भगवान का आपको दर्शन होगा। ये सेवा है हमारी। उनको लगता होगा कि हम यहाँ पर असिस्टेंट है, हम यहाँ पर नर्स है, हम यहाँ पर डॉक्टर हैं, हम यहाँ पर फलाना है, हम यहाँ सिक्योरिटी हैं। आर्मी में जब होता है ना, आर्मी में जब युद्ध होता है तो रसोईया भी गन चलाता है, बोलता नहीं मेरा तो काम खाना बनाने का है, ऐसा नहीं बोलता है वो। युद्ध के समय में वो भी गन उठाएगा, मशीन गन, वो भी AK-47 चलाएगा सबके ऊपर, फिर युद्ध होने के बाद फिर रखेगा, फिर रसोई में आलू काटेगा जाके। वैसे ही हमारा सेना है, समय पर हॉस्पिस के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर हर व्यक्ति दर्द निवारण के लिए भागेगा, नाम जपेगा कान में उसके, भगवान का जल देगा उसको, कुछ महाप्रसाद देगा, कोई है नहीं उस समय, अपने खुद जाके भगवान के याद कराएगा उसको अंतिम समय पर। तो बोले नहीं मैं तो स्पिरिचुअल केयर का नहीं, मैं तो नर्स हूँ, मेरा काम नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। सब लोग उस व्यक्ति को उस समय पर आध्यात्मिक सहायता देकर, सपोर्ट देकर, शक्ति देकर, बल देकर उसको भगवान के धाम में छोड़ने का काम कर सकते हैं। उतनी शक्ति हर जीव को भगवान ने दी है। आप ना कर सकते हैं उसको अपनी स्वेच्छा से, लेकिन अगर हाँ करते तो आप वो काम कर सकते हैं। और मैं तो महात्मा तो हूँ नहीं हूँ, मैं तो संत तो हूँ, मेरे में क्या शक्ति हो सकती है, लेकिन जो भी शक्ति है वो बटोर कर अगर आप उस समय उसको देंगे सहायता, तो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो। उस समय जो भी आपके बल में है, क्षमता में है, उसको आप देंगे तो उसका दिशा बदल जाएगा पूरा। वो यमराज के पास जाने के बदले भगवान के पास चला जाएगा, तो यमदूत के दर्शन करने के बदले में विष्णु के दर्शन करेगा। ये शक्ति है इस फॉर्मूला के अंदर, हमारे अंदर नहीं, उस फॉर्मूला के अंदर है, भगवान के नाम के अंदर है, भगवान के चरणामृत के अंदर है। हमको क्या करना है, हम पोस्टमैन है खाली, वो देना है उनको, भगवान का नाम प्राप्त हुआ है वो कान में उनका गुंजना है बस। इसलिए आपको लगता होगा कि हर बार आके मैं यही बात बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी रिवीजन है, बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा क्या भाग्य है। अगर हमको 2 घंटे मिलते हैं ब्रज के अंदर, 2 दिन मिलते हैं, 2 महीने मिलते हैं, 2 साल मिलते हैं, 20 साल मिलते हैं, ये हर मात्रा में जो व्यास यहाँ का प्राप्त हो रहा है वो इतना कीमती है, इतना मूल्यवान है। कुछ लोग आप में से ब्रजवासी हो, जन्म यहीं लिया आपने, कुछ लोग बहुत साल से यहीं गुजर बस गए हो यहाँ पर, तो हम लोगों ने क्या है, ठीक है यार, लई बाजार भी है इधर, ये भी है उधर, भंगी कॉलोनी भी है उधर, फलाना चीज़ भी है, अरे जमुना जी भी है उधर भी, ऐसा है ठीक है, सब कुछ एवरीथिंग फाइन, एक उसको सामान्य बना दिया हमने अपनी भावना से, लेकिन सामान्य नहीं है वो, ये भगवान का दिव्य धाम है। प्रलय काल में इसका नाश नहीं होता है, ये ऐसे ही रहता है, हमको नजर आता है अपनी नज़रों में कीचड़ है, गुदा है, कुसूर है, ये वो है, लेकिन दिव्य धाम भगवान का चिरंतन भगवान लीला करते रहते हैं। हम बोलेंगे हम जो कमरे में बैठे हैं उसको हरा रंग का पेंट लगाया हुआ है, बाजू मरीज भरती हैं, यहाँ पर भगवान लीला कर रहे हैं, ये भगवान की चिरंतन नित्य लीला स्थली है, और उसको हर समय पर धन्यवाद देते रहना भगवान के, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमको यहाँ जन्म दिया, थैंक यू वेरी मच आपने हमको यहाँ ही बसा दिया, थैंक यू वेरी मच आपने हमको यहाँ सेवा करने के लिए भेज दिया, थैंक यू वेरी मच भगवान, धन्यवाद है आपका, हमारी योग्यता नहीं थी आपने हमको यहाँ भेज दिया, मतलब हम किसी रास्ते पर थे आपने अपने घर पे हमको आसरा दिया, हम रास्ते में कहीं चल रहे थे आपने बुलाकर अपने आंगन में बसने दिया, अपने घर में बसने को दिया, ये उनका घर है, निज घर है उनका, जहाँ पर वो अंतरंग लीला करते रहते अपने भक्तों के साथ में, ऐसे घर में आपको उन्होंने आसरा दिया है, कितनी भाग्य की बात है। उसको क्या है ना, मुक्ति लेख ही बात है, हर पल उसको याद देना था हमको, कुछ समस्या आ गई तो उसको भूल जाते हैं, कुछ परेशानी आ गई तो उसको भूल जाते हैं, तो हर समय उसको याद करते रहना, रोज सवेरे उठकर नियम बनाना के धन्यवाद देना है उनको उसके लिए, कुछ भी हुआ यहाँ पर, अच्छा हुआ बुरा हुआ, हमारी नज़रों से अच्छा बुरा हुआ, लेकिन जो भी हुआ उनकी इच्छा से उनके कृपा से हुआ, इसलिए मैं आपको त्रिवार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ पर, आप लोगों को भगवान ने रखा है यहाँ पर। हम तो आते जाते रहते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं तुरंत भागना पड़ता है माया नगरी में, आप लोग यहीं बैठे हैं, यहीं आपको सेवा प्राप्त हो रही है, इसलिए अपने आप को टटोल हृदय के अंदर कि अगर हम याद नहीं कर रहे उनको, ना धन्यवाद दे रहे हैं, वो देना आरंभ करो। क्योंकि ये मत समझना कि हमको वो रखेंगे यहाँ पर। ऐसे कई ब्रजवासी हैं जो अभी लंदन में रहते हैं, कैलिफोर्निया में रहते हैं, ऐसे कई ब्रजवासी जानता हूँ मैं, गोस्वामी उनके बालक हैं वो, उनके बालक ने उन्हें जन्म लिया है, उनको ना जन्माष्टमी पता है, ना गौर पूर्णिमा पता है, ना होली पता है, ना कुछ नहीं, सुनते हैं पापा से अपने, लेकिन जन्म ही उनका उधर, उनको कुछ पता नहीं है, उनकी भाषा में बोलते हैं, उनकी तरह से बोलते हैं। तो भगवान को यहाँ से बैठाकर बाहर फेंकने में टाइम नहीं लगने वाला है। हाँ, कई लोगों, मैं कम से कम सैकड़ों लोगों को जानता हूँ मैं, जो जन्म यहाँ का है उनका गोसाई, और अभी लंदन, अमेरिका, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क में रहते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं हमारा तो एक साला जो है वो उधर है। लेकिन वो दुर्भाग्य की बात है, अगर यहाँ से उठकर आपको कहीं और जाना पड़ा तो क्या कह सकते उसके बारे में। लेकिन अगर बाहर भटकते हुए जीव को अगर यहाँ आसरा मिलता है तो कितने भरम भाग्य की बात है। कुछ लोग बुद्धवासी कहते हैं, क्या प्रभु जी आप बोलते हैं, ब्रज ब्रज क्या है, आप खरा आनंद तो आपके पास है बम्बई में, हमें बम्बई ले चलो भाव, बम्बई ले चलो प्रभु जी, आपको बम्बई ले चलो, यहाँ पर क्या है, ब्रज में क्या है, कछु ना है ना यहाँ में, ब्रज में क्या रखो है, कछु ना रखो है, ऐसे बोलते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सोचना। अरे क्या है, कुछ पैसा नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, आपके पास में कितना थाट है, देखो आप कितने बड़े रुबाब से रहते हो, उसी को सब कुछ मानते हैं जीवन का। लेकिन थाट, रुबाब, धन, बलत है ना, सब नश्वर है, कब खत्म होगा, कब निकल जाएगा हमसे हाथ में, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन ब्रज का वास जो है ना, उसके आपने जो कमाई किया है वो जीवन भर काम आएगी आपको। एक साल भी आप रह पाएंगे यहाँ पर, दो महीने भी रह पाएंगे, जो भी लाभ आपको होगा उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे आपको वो जीवन भर लाभ करेगा। ऐसा धन यहाँ पर मिलता है, यहाँ के वास से, यहाँ के सेवा से। इसलिए मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग सेवा कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है। वृंदावन धाम में है, और यहाँ से गौलोक धाम में जाने का जो रास्ता है वो आप लोग वहाँ पर सेवा कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना, हम भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों को अच्छी मति भगवान देते रहे हमेशा, सन्मति, अपनी कृपा आप पर हमेशा बनाए रखें, और यहीं पर आपको सेवा अधिक अधिक प्राप्त हो जाए अपने भावना के अनुसार, वो आपको देते रहें सेवा, अपने गोद में रखें, आपको अपने चरणों में रखें। इससे बड़ी लाभ क्या है दुनिया में बताओ, कोई चीज़ इससे बड़ी नहीं सकती। और हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे विशेष रूप से आपके लिए, कि उनका जो भाव है सेवा का, उनको स्वामी को प्रसन्न करने का, वो हमको भी प्राप्त हो जाए, थोड़ा बहुत अणुमात्र क्यों ना हो, हम जैसा जीवन धन्य हो जाएगा उससे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? बहुत ज्यादा बोर नहीं कहना आपको? हमारे हाथ में केवल सेवा करना है, हमारे हाथ में और कुछ नहीं। याचना करना हमें हमारे हाथ में है, हम लोग भिक्षा मांग सकते हैं, तो भगवान एक भिक्षा आप जरूर देना, आपके चरणों में रखना, सेवा देना हमेशा, जरूर कर सकते हैं। लेकिन उससे ऊपर भी एक चीज़ है, अगर भगवान समझते हैं कि आपके लिए ये अच्छा है, अभी आप वहाँ सेवा करो तो भी आप ब्रज में ही हो, अगर यहाँ से बाहर जाकर आप उनके सेवा में ही हो तो सेवा में ही ब्रज है। ब्रज एक जगह भी है, हाँ जरूर जगह है, वो एक स्थान भी है, वो जो हमको आंखों से देख सकते हैं उसको, लेकिन असली ब्रज जो है वो कहा गया है कि वो एक चेतना का स्तर है, इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। और अगर आप भगवान की दया से अगर वो आपको भावना प्राप्त होती है और आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ सेवा में रहेंगे तो आप ब्रज में ही हो, ब्रज आपके साथ चला जाएगा अगर आपका भाव हो तो। लेकिन वो करने के लिए हमको कितनी प्रयास करना पड़ेगा। अगर ब्रज भाव हमारे साथ जाके बम्बई में सेवा देने के लिए अगर मौका मिलता है और वहाँ पर हमारा भाव वैसा हो रहा है तो ये इनकी कृपा है बड़ी। इसलिए गुरुजी की आज्ञा में रहना चाहिए, अगर गुरुजी की आज्ञा होती है यहाँ से वहाँ जाओ, कलकत्ता में सेवा करो, तो वहीं भी ब्रज प्रकट होगा आपके लिए। विदुर जी कहते हैं भागवत में, तीर्थ गुरुवंती तीर्थानी, कि महाराज जी आप तो स्वयं तीर्थ हो, आपके चरणों में सब तीर्थ विराजमान हैं, क्योंकि आप कृष्ण को हृदय में लेके चलते हो, इसलिए सब जगह पर आप तीर्थ को प्रकट करते हो आपके निवास से, आपके होने से। सबको समझना यही है कि अगर गुरु की आज्ञा होती है तो चलो अभी आप यहाँ से जाके मुंबई में सेवा करो या और कहीं फलाना सेवा करो, तो अगर आपके अंदर वो भाव है तो आप जहाँ जाएंगे वहाँ ब्रज है आपके लिए। क्योंकि तो ब्रज की एक एक स्तर पर व्याख्या ऐसी भी की गई है कि जहाँ गुरु जी की श्रद्धापूर्वक सेवा होती है वहीं आपके लिए ब्रज प्रकट हो जाता है। तो शरीर से यहाँ वहाँ होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ब्रज में ही अगर ब्रज भाव को प्राप्त कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। आप बोलेंगे अरे आप तो उल्टा भी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आप यहीं रह रहे हो और यहीं का भाव प्राप्त करने का मौका मिला है तो बहुत सुने तो सुहागा है, लेकिन नहीं मिल रहा हो तो यहाँ का भाव जो है उसको ग्रहण करके आप ले जाओगे तो जहाँ आप जाओगे वही ब्रज है आपके लिए। अभी गोपियाँ तो थी 100 साल तक दूर रही कृष्ण से, और उद्धव जी आए वो तो हमेशा भगवान के साथ में थे, इतने साथ में थे भगवान के, उठना बैठना खेलना हंसी मजाक शिकार खेलना सोना सब कुछ उनके साथ में, इतना सानिध्य था उनका। और हमारे तुम्हारे लिए तो इससे बड़ी की बात क्या हो सकती है, इतना भगवान का सानिध्य इतना प्रेम। लेकिन वही उद्धव जी जो इतने भाग्य प्राप्त किए चुके हैं जो ब्रज में आते हैं तो क्या देखते हैं, अरे ये तो गोपियाँ जो है वो मुझसे भी अधिक भगवान के पास में, मैं शरीर से पास में हूँ या आत्मा से पास में। तो शरीर से पास में होने का इतना भाग्य था उनका, वो छोड़कर वो ब्रज में आए उनसे दूर रहने के लिए, तपस्या करने के लिए, तृण का पत्ता बनने के लिए। क्योंकि वो जानते थे कि भगवान से शरीर से इतना दूर रहकर भी इतनी उत्कट अवस्था में भगवान के वो सान्निध्य में थे भाव रूप में, नहीं तो क्यों छोड़ते, वो क्यों छोड़ के आते ब्रज भगवान का सान्निध्य। तो असली चीज क्या है, भाव। वो भाव की वजह से भगवान शरीर से दूर रहने पर भी सबसे निकट थे उनके, जितने द्वारकावासी भी नहीं थे, जितनी उनकी पत्नियां भी नहीं थी, जितने उद्धव जी भी नहीं थे। ये बात उद्धव जी के समझ में आई, मतलब कहाँ जा रहे हो, मैं जा रहा हूँ। और कहाँ जा रहे हो, मैं तो ब्रज में जा रहा हूँ। क्यों, तृण का पत्ता बना रहे, तृण का पत्ता बनने के लिए। क्यों नहीं, जो गोपियां इतने उत्कट भाव से इतने भगवान के निकट हैं उनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है, तृण का पत्ता बनना, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तब वो समझ गए कि द्वारका की पाठशाला से मैंने उसको गोपी की पाठशाला में भेजा था, वो भी पास हो चुका एग्जाम, जो हेतु से उसको मैंने गोपियों की पाठशाला में भेज दिया था वो अच्छी तरह से अच्छे अंकों से पास हो गया है, उद्देश्य सफल हो गया। देखो कितनी बड़ी बात है, ये सब बातें यहीं की हैं, इसी धाम की हैं, ये सब गोपियाँ नंद महाराज ये सब यहीं के हैं, यही के यही यहाँ की पूंजी वही है सब ये, और उसी भूमि में उस रज में जहाँ पर उनके चरण चिन्ह लगे हुए हैं हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं, कितनी बड़ी बात है। हाँ अनंत करोड़ों देवताओं के जन्मों पर भी इतना लाभ नहीं हो सकता है जो एक तुच्छ मानव बन के इस भूमि में प्राप्त हो सकता है, कितनी बड़ी बात है। श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री राधा रानी की जय। और कोई प्रश्न है किसी का, एक प्रश्न ले सकते हैं। यस मैम,
जैसे कि कोई भी इन जीवन में तो दुख सुख आते ही रहते हैं, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा दुख आ गया कुछ हो गया तो वो मतलब उस समय भगवान जी से गुस्सा हो गया कि ऐसा दुख क्यों दिया करके, वो दूर हो गया भगवान जी से, पूजा वूजा सब कुछ जो भी है छोड़ दिया, तो उसकी क्या गति है।
ये अज्ञान का लक्षण है, दुख सुख पर भगवान की प्रसन्नता समझना ये अज्ञान का लक्षण है। जैसे बालक कोई गलती करता है तो माता उसको कुछ दंड देती है तो बोले कितनी दुष्ट माता है, ऐसे बालक बोल सकते हैं, ऐसे कोई माता होती है, लेकिन वो दंड देना जो है वो प्रेम का प्रतीक है ना। बच्चा आगे जाकर कुछ गलत काम ना करे, संस्कार अच्छे मिले, इस लोग को दंड देकर अपना प्रेम जताते हैं माता जी। लेकिन अगर हम केवल हमारे जीवन में अच्छा उत्कर्ष हो रहा है, धन भी अच्छा आ रहा है, प्रगति भी अच्छी हो रही है, लड़की की शादी भी अच्छी जगह पर हुई और हमारा शरीर भी स्वास्थ्य में है, कोई रोग भी नहीं हो रहा है, तो है भगवान बढ़िया है, सब बढ़िया है, ये सोचना मतलब क्या है, अभी भी मैं ही हूँ ना बीच में, अभी अहंता के सर पर ही चल रहे सब, नाम भगवान का है खाली, लेकिन मैं ही केंद्र स्थान में हूँ और मुझे दुख प्राप्त होता है तुरंत तुम बंद। एक वो बाबा कथा बता रहे थे, बहुत सुंदर कथा है कि कार्तिकेय की कोई पूजा कर रहा था, बहुत व्रत किया उसने और उसको एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, तो उन्हें बड़े कार्तिकेय भगवान का उत्सव मनाया और क्या क्या किया उसके लिए। हाँ ये हमारे प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो है अभी कहानी बताते हैं। और कुछ दिन बाद क्या हुआ, वो पुत्र को कुछ रोग हो गया, एक साल के अंदर वो पुत्र मर गया, तो ये आदमी आया पत्थर लेकर कार्तिकेय के मूर्ति को उसने ध्वंस कर दिया पूरा। मतलब उसका प्रेम कार्तिकेय पर नहीं था, उसका प्रेम अपने इंद्रिय भोग के ऊपर था, कार्तिकेय को भाना था खाली, तो जिसका उन्होंने पूजा पाठ किया, व्रत किया, उसके लिए उस मूर्ति को एक क्षण में नष्ट करने के लिए उसको कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि लाभ हानि के ऊपर वो भगवान को जजते रहते हैं। और लाभ हानि पर भगवान को जजना मतलब बिजनेस करना, उनका व्यवहार करना। तो क्या लगता है आपको, भगवान आपसे व्यवहार करेंगे? अगर आप उनसे व्यवहार करें तो आपसे व्यवहार करेंगे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है ऐसा सोचना। सच्चा भक्त का लक्षण क्या है? आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम। हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, आप मुझे गले लगा दो, ठुकरा दो, दुख दो, सुख दो, अपने पास रखो, दूर ठुकरा दो, पास बुलाओ, दूर भगाओ, हाँ कुछ भी करो, मैं आपका रहूँगा। क्या आखिरी वर्ड है उसका? नहीं मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। आप मेरे नाथ बने रहेंगे, चाहे ठुकरा देंगे या गले लगाएंगे। ये भक्त का लक्षण है। ऐसे भक्त के लिए भगवान निछावर होते हैं। मैं जो बताया ना कहानी में कि भगवान ऐसे भक्त के अधीन हो जाते हैं, वो ये भक्त हैं जो कभी भगवान को पूछते नहीं है कि तुमने क्या किया मेरे लिए, इतना तेरा पूजन किया, देखो मेरा बालक मर गया, इतना पूजन किया मुझे कैंसर हो गया, इतना पूजन किया सब नष्ट हो गया, धन लुटेरे लेके गए, कोई बोलता नहीं। उसको ये विश्वास होता है कि जो भी हो रहा है ये उनकी इच्छा से हो रहा है। अगर मैं उनके अधीन हूँ तो मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। मेरे इंद्रियों के लिए लगेगा कि बुरा है, लेकिन मेरे लिए कभी बुरा नहीं होगा वो। ये जिसको विश्वास है वो सही भक्त है, जो सुख में धन्यवाद देता है और दुख में बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता है। थैंक यू वेरी मच, ये आपने ही किया है मैं जानता हूँ, इसलिए धन्यवाद है। आप जरूर ही अच्छे के लिए किया होगा। एक ही काम करना बस, मुझे उस दुख को सहने की शक्ति भी देना। दुख भेज रहे हो तो शक्ति भी देना, बस यही भक्त प्रार्थना करते रहते हैं। और बाद में जो भेजना है भेजते रहो। सुख भेजोगे तो मुझे गर्व न होने की शक्ति देना, मतलब मैं गर्विष्ठ न बन जाऊँ कि देखो कितना बड़ा आदमी हूँ, देखो इतना सब किया और ये हो गया। ये गर्व भी ना होने देना, सुख और धन दौलत के साथ साथ, इज्जत के साथ साथ, मान सम्मान के साथ साथ, और कुछ नष्ट भी हो गया तो मुझे धन्यवाद करने की शक्ति देना और सहने की शक्ति भी देना। ऐसे भक्त के लिए भगवान अधीन हो जाते हैं। तो ये समझ में आप आया उत्तर का क्या? भगवान से आपको केवल बोलना चाहिए, भगवान तव अस्मिन, मैं आपका हूँ, अभी आपके गोद में, आप जो मुझे करना है वो आप करो, मैं जानता हूँ कि आपकी गोद में हूँ, बस सबसे अच्छी जगह पर हूँ। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है कि हम उनको धन्यवाद करें, सुबह उठकर थैंक यू वेरी मच बोलें, कल जो भी कष्ट हुआ थैंक यू बोले, कल अपमान हुआ थैंक यू माय लॉर्ड, कल धन दौलत टूट गई हमारी थैंक यू, कल बीमार हो गए थैंक यू वेरी मच, जो भी हुआ भगवान अच्छा किया बुरा किया सब आपकी कृपा है, थैंक यू वेरी मच। ऋणी भाव हाँ बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री वृंदावन धाम की जय।